परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने देखा है कि यूहन्ना ने सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों का क्या होने वाला है उसके बारे हमें बताया है। तब उसे छोटी पुस्तक खाने को कहा गया, जो खाने पर मुंह में तो मधु सी मीठी लगी परंतु पेट में कड़वा हो गया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो अंतिम पुस्तक है निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे ताकि आज का वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से फिर से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए। आप हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन उनके जीवन में भी कार्य करने पाए, उन्हें आपकी शांति मिलने पाए। आज के इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। मेरे प्रियो, एक बात तो आप निश्चित रूप से जान लें कि यूहन्ना में एकता की भावना थी। उसका मानना था कि सब जातियां, सब मनुष्य, सब भाषाएं, सब वर्गों के लोग, अर्थात यूं कहें कि सब वर्णों को परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि उन्हें आने वाले दंड की चेतावनी मिलना आवश्यक है। यदि वे महाक्लेश में रहें तो शीघ्र ही उन्हें बोध होगा कि यह हजार वर्षीय प्रभु राज नहीं है, और सच तो यह है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि वे नरक में हैं। इसी कारण यूहन्ना दुखी हुआ था, पुस्तक उसके पेट में कड़वी हो गई। इसका भी यही कारण था, उसे अनेकों में भविष्यवाणी करनी थी। इससे पूर्व कि प्रभु यीशु अपने राज्य में आए, अभी बहुत सारी भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, अभी हम पुस्तक के आधे भाग में भी नहीं पहुंचे हैं। विभिन्न जातियों और मनुष्यों में और उनसे संबंधित जो भविष्यवाणी है अनिवार्य रूप से उनके विरुद्ध में है। यह आने वाले दंड की भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियों की यह श्रृंखला अध्याय 12 में आरंभ होगी और वह इस तथ्य को उजागर करेगी कि अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का अध्ययन आपके जीवन पर निश्चित प्रभाव डालेगा। यह या तो आपको प्रभु यीशु के निकट लाएगा या आपको उससे कहीं दूर कर देगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 11 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 11 का विषय है छठवीं और सातवीं तुरहियों की मध्यवर्ता, सातवीं तुरही का फूंका जाना। अध्याय 11 के पहले 14 पद छठवीं और सातवीं तुरहियों के मध्य अन्य विषय की चर्चा आरंभ रखते हैं और अंतिम पदों में सातवीं तुरही का फूंका जाना है। जी हाँ, इस अध्याय में हम देखेंगे कि अन्य जातियों के समय के केवल 42 महीने शेष हैं और दो गवाह इन 42 महीनों में भविष्यवाणी करेंगे। यहां दूसरी हाय भी है और तदुपरांत सातवीं तुरही फूंकी जाएगी। यह अध्याय हमें पुराने नियम के वातावरण में ले आता है। मंदिर युग का वर्णन, यहूदियों और अन्य जातियों में अंतर आदि से संकेत मिलता है कि हम पुराने नियम की व्यवस्था में हैं। कालक्रम के अनुसार सातवीं तुरही हमें महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु के आगमन के समय में लाती है। हम आगे देखते हैं कि अन्य जातियों के समय अर्थात अन्य जातियों के समय के अंत की तिथि, यहां हम महाक्लेश के अंत के प्रस्तावित युगों के संकेत को देखते हैं। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। यहां हम उस युग को देख रहे हैं जिसकी चर्चा प्रभु यीशु ने लूका के सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में की है, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। कभी कोई अन्य धारणा इस प्रकार की थी कि जब इसराइल ने यरूशलेम पर अधिकार किया था तब अन्य जातियों का समय समाप्त हो गया था। मेरे मित्रों, यरूशलेम तो आज भी अन्य जातियों से रौंदा जाता है। आप पुराने यरूशलेम नगर की सड़कों पर यदि किसी यहूदी को देखें तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि मैंने आज तक वहां यहूदी नहीं देखे हैं। वह सब अन्य जातियां ही हैं, गैर यहूदी धार्मिक समुदाय वहां सब जगह छाए हुए हैं। उन्होंने पुराने यरूशलेम में हर जगह अपने धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं। यरूशलेम आज भी अन्य जातियों से रौंदा जा रहा है, परंतु जब आप महाक्लेश में प्रवेश करते हैं और अंतिम अर्धभाग में पहुंचते हैं तब अन्य जातियों का समय बस 42 महीने बचा है। 42 महीने महाक्लेश का आधा समय है। यहां पर लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। पुराने नियम में या नए नियम में आप जब भी नापने का उल्लेख देखते हैं तो वह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर इसराइल के साथ व्यवहार करना आरंभ कर रहा है। देखिए यर्मिया नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसके 38 और 39 पद में और जकरिया 2 में, यह सरकंडा लाठी के जैसा था, चरवाहे के लाठी के समान। भजन संहिता 2 अध्याय के 9 पद में हम देखते हैं कि लाठी ताड़ना और दंड के लिए काम में ली जाती है। लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहां जो कुछ हम देखते हैं वह अन्य जातियों के समय का आंकलन है। उसके बाद उन्हें दंड दिया जाएगा। लाठी शांति के लिए भी है। भजन संहिता 23 उसके 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अतः इस अध्याय में दंड है तो शांति की भी चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के मंदिर अर्थात पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। परमेश्वर का मंदिर अर्थात पुराने नियम का युग, क्योंकि कलीसिया के लिए तो मंदिर नहीं है, कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है जो विश्वासियों की देह है, भवन नहीं। इफिसियों की पत्री 2:21-22 पद में हम देखते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के एक साथ बनाए जाते हो। आगे लिखा है वेदी, अर्थात प्रार्थना के लिए बनाई गई सोने की वेदी, क्योंकि होम बलि की वेदी बाहरी प्रांगण में थी, मंदिर में नहीं। मेरे प्रियो, यूहन्ना से कहा गया कि वह मंदिर और वेदी को ही नहीं, उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। परमेश्वर अपने उपासकों को गिनता है। तब हम देखते हैं, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप। इसका अर्थ है कि जो मंदिर का मुख्य भाग नहीं है उसे छोड़ दिया जाए। होम बलि की वेदी और पीतल का हौद नहीं नापा जाना था। यह वेदी प्रभु यीशु के क्रूस का प्रतीक थी। इसका अर्थ यह हुआ कि महाक्लेश के कष्टों में भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए उपलब्ध होगा, उसे नापना नहीं था। वह तब भी सबके लिए उपलब्ध होगा। तब हम देखते हैं, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। इससे स्पष्ट है, इससे प्रकट होता है कि यह युग अन्य जातियों ही का है, परंतु उसका प्रभुत्व केवल 42 महीनों का है। हम देख चुके हैं कि इससे प्रभु यीशु के वचनों की पुष्टि होती है जो उसने लूकार्चे सुसमाचार 21:24 पद में कहे थे। ध्यान दीजिए, 42 महीने, 3.5 वर्ष, जो महाक्लेश का अंतिम आधा भाग होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:5 पद में इसी बात को दोहराया गया है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। मेरे प्रियो, यह ख्रिस्त विरोधी के इस पृथ्वी पर राज करने का अंतिम आधा समय है। इस युग की चर्चा फिर 12:14 पद में की गई है। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। लिखा है एक समय और समयों और आधे समय, इसका अर्थ है 3.5 वर्ष। इस युग के लिए दानियल भी नाप की इसी इकाई का उपयोग करता है, जिसे हम दानियल लवी की पुस्तक 7:25 पद में पढ़ते हैं। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तब फिर दानियल की पुस्तक 12:11 पद में वह कहता है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन अर्थात 3.5 वर्ष। दानियल के पुस्तक 9:27 पद में देखिए, लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह अन्न बलि और मेल बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहां महाक्लेश 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। दानियल का सप्ताह जो 7 वर्ष का है और यह 7 वर्ष का समय दानियल का 70वां सप्ताह है जो महाक्लेश का समय होगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं 2 गवाहों की भविष्यवाणी का समय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11:3 पद में लिखा हुआ है, मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इन दो गवाहों के विषय मतभेद बहुत है। हमें बताया नहीं गया है कि वे कौन हैं। गोटेट कहता है कि वे इस पुस्तक के सबसे अधिक आश्चर्यजनक मनुष्य हैं। यदि इनकी पहचान पुस्तक की बातों को समझने के लिए अवश्य होती तो उनके विषय कोई तो संकेत दिया जाता। सनसनी पैदा करने वाले प्रचारक ऐसे ही क्षेत्रों पर सदैव ध्यान आकर्षित करते हैं। यहुना से तो कहा गया था कि गर्जन के सात शब्दों में क्या कहा गया था उसे गुप्त रखे, परंतु ये प्रचारक आपको बता सकते हैं कि क्या कहा गया था। वे तो आपको इन दो गवाहों के नाम भी बता सकते हैं। वे जो प्रकाशित वाक्य को ऐतिहासिक घटना मानते हैं, धर्म के दिग्गजों को ये दो गवाह कहते हैं, परंतु इस विचार से आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। परंतु वे जो प्रकाशित वाक्य को भविष्य की घटना मानते हैं, इन दो गवाहों की पहचान में पूर्णतः सहमत नहीं होते हैं। सीस एवं गोवेट के अनुसार वे हनोक और एलिया हैं। डीन एल्फोर्ड, वाल्टर स्कॉट और जेनल्ड ग्रे बर्नहाउस के अनुसार वे मूसा और एलिया हैं। विलियम न्यूमन के अनुसार ये दो गवाह पहली बार उभर रहे हैं, वे पहले कभी नहीं थे। उनके वर्णन से वे निश्चय ही मनुष्य हैं, और व्यवस्था के अनुसार दो गवाह हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 17 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, परंतु दो या तीन मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु ने कलीसिया के संबंध में भी यही कहा था, यदि वह तेरी ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दो गवाह मनुष्य हैं और संख्या में दो हैं। ये दो बातें तो हम निश्चित ही जानते हैं। मित्रों, मुझे यह तो निश्चित पता है कि एक गवाह एलिया है, क्योंकि उसका पुनः आगमन घोषित किया गया है। मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 11 पद में भी इसका उल्लेख किया गया है। एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। अतः एलिया का दो गवाहों में से एक होना तो निश्चित है। ये दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यह एलियाह की मनभावी उक्ति है। हम पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। ये दो गवाह दो दीवट हैं, अर्थात जगत में ज्योति हैं। रूपांतरण के पर्वत पर एलिया की उपस्थिति इसका एक और सुझाव है, परंतु इसके आधार पर दूसरा गवाह मूसा होगा, जो मानना कठिन है। और रूपांतरण का पर्वत अंततः एकमात्र सुझाव नहीं है। मैं न तो विवाद करूंगा और न ही सिद्धांत स्थापित करूंगा, परंतु मेरे विचार में दूसरा गवाह यहोना बपतिस्मा देने वाला है। वह यीशु के प्रथम आगमन में अग्रदूत था और अपने स्वभाव एवं संदेश में एलिया के जैसा था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों परस्पर सहमत होकर चलेंगे। दोनों ही जानते थे कि अंधकार का विरोध करना और असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े होना कैसा होता है। दोनों ने ही पूर्व काल में उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। यहुना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का गवाह होगा और एलिया पुराने नियम का। यहुना बपतिस्मा देने वाला कलीसिया मसीह की दुल्हन का भाग नहीं है, परंतु उसने स्पष्ट कहा है कि वह दूल्हे का मित्र है। हनोक का दूसरा गवाह होना संभव नहीं, क्योंकि वह एक अन्य जाति मनुष्य था। उसके ना तो मरने का सत्य ही उसे इस पद के लिए अयोग्य ठहराता है, क्योंकि महाक्लेश के समय कलीसिया उठा ली जाएगी, जिनमें से कुछ जीवित ही उठा लिए जाएंगे। अतः हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक गवाह एलिया है और दूसरा गवाह कौन है। आपकी कल्पना और मेरी कल्पना एक बराबर ही है। लिखा है 1260 दिन। यहां मुख्य बात इन गवाहों की पहचान नहीं है, मुख्य बात है उनके आने का समय, जो महाक्लेश का प्रथम अर्धभाग था, दूसरा अर्धभाग है। उनका प्रथम अर्धभाग में होना अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे पशु के आने तक भविष्यवाणी करेंगे, तदुपरांत वे शहीद हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, टाट ओढ़े हुए, यह व्यवस्था के युग का वस्त्र था, अनुग्रह के युग का नहीं। अतः एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों ही के लिए यह उपयुक्त है। मेरे प्रियो, यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं दो गवाहों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हम स्पष्ट रीति से नहीं कह सकते कि ये कौन है, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने समय के अंतराल में इससे हमें स्पष्ट करेगा। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है और आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।